नमस्कार, मार्गदर्शन कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ व्यक्ति उपस्थित है, जो ऐसे तो रहते हैं पर्दे के पीछे, लेकिन देश को चलाने के असली काम यही लोग करते हैं। नेता से लेकर जनता तक सबको एक साथ लेके इनको चलना पड़ता है। ऐसे ही लोग उपस्थित हुए हैं कुछ प्रश्नों के साथ। आइए उनसे मिलते हैं, सुनते हैं उनके प्रश्न क्या है और उसका जवाब देने का कोशिश भी करते हैं। उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ है राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमलेश दीदी, जो कि कटक सब जोन की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संस्था की वो चीफ है और पिछले 50 सालों से राजयोग की साधना कर रही है, लोगों को उसकी शिक्षा भी दे रही है और उसके साथ लोगों को सही मार्ग में चलने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। आइए उनसे मिलते हैं। दीदी नमस्कार, आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले दीदी आपसे अनुरोध करेंगे कि ये लोग बहुत बड़े काम करते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पहले दे दे।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में अपने प्रशासक वर्ग के भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रशासक बहुत महान माना जाता है। तो प्रशासक भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सुप्रशासक, एक होता है कुप्रशासक। और प्रशासन में जहां तक देखा जाए तो परिवार, समाज और देश, राज्य सब आ जाता है। एक एक को लेकर परिवार बनता है, परिवारों को लेकर समाज होता है, समाज को लेकर देश और राज्य बनता है। तो सब जगह प्रशासन की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रशासक को बहुत ही विशेषताओं से भरपूर होना चाहिए, उसको सब बातों में प्रवीण होना चाहिए और सुप्रशासक होना चाहिए। तीन प्रकार के प्रशासक होते हैं, एक होता है दिव्य प्रशासक, एक होता है मानवता का प्रशासन और एक होता है दानवता का। तो दिव्यता का प्रशासक माने जो हमारे जीवन के अंदर दिव्यताओं को भरपूर करे, जो देवताओं के राज्य में लक्ष्मी नारायण के समय में था। फिर मानवता प्रशासक जो राजा विक्रमादित्य हुए द्वापर में, या बापू गांधी जी, धर्म को मानने वाले युधिष्ठिर, उन्होंने किया। उसके बाद दानवता का प्रशासन आया, तो जैसे दुर्योधन है उसने किया। लेकिन वर्तमान का प्रशासन तो हिल रहा है, सिंहासन डोल रहा है, अंदर ही अंदर कुछ बोल रहा है। अच्छे अच्छे चुनौती देने वाले भी सभ्यता की सड़क पर भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें रियली में प्रशासक के अंदर जो आध्यात्मिकता होनी चाहिए वो नहीं है। कहा जाता है कि आध्यात्मिकता के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना अध्यात्म लंगड़ा है। तो उनका कैसे संतुलन रहे और कैसे उनके अंदर बैलेंस आए, उनके पास कैसे संयम रहे, नियम रहे, और वो कैसे अपने अनुशासन को सुंदर कर सकते हैं, वो उनके अपने हाथ में है। अगर प्रशासक खुद ही छोटी छोटी बात में डिस्टर्ब होता रहेगा तो वो दूसरे भी डिस्टर्ब होते रहेंगे। तो प्रशासक का मेन क्वालिटी होती है कि वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और जिसके ऊपर प्रशासन कर रहा है उसकी हर क्वालिटी को देखकर उस हिसाब से उससे जिम्मेदारी देना था चाहिए। एक समय था भारत सारी विश्व को प्रशासन करता था और उसके ऊपर था। कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन आज भारत क्या हो गया, कागज की पुड़िया हो गई। कहने का मतलब है जो प्रशासक है उसके अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए, विशाल हृदय होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए, शांति प्रेम होना चाहिए। इसके ऊपर आपको एक उदाहरण बता रही हूँ कि एक बार हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय का जो हेड ऑफिस है माउंट आबू, वहां पर एक किसी कंपनी के मैनेजर गई 3 दिन के लिए। तो उस समय वहाँ मुख्य प्रशासिका के रूप में अपनी दादी प्रकाशमणि जी थी। तो वो 3 दिन रहे, उन्होंने दादी प्रकाशमणि को 3 दिन देखा, लेकिन उन्होंने बहुत विशेषताओं में एक विशेष बात पाई कि दादी जी कभी भी ना खुश नहीं होती है, हमेशा खुश मिजाज और हर्षित मुख रहती है। एक बार उन्होंने देखा वहाँ बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था, तो बच्चों के साथ में दादी जी बच्चों की तरह मनोरंजन कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो एक वो ही जो कंपनी के मैनेजर थे, उन्होंने एक बार जब दादी से मिलना हुआ तो दादी जी से पूछा, क्या आप इतना बड़ा कार्यभार संभाल रही हैं, 8,500 संस्थाओं का प्रशासन कर रही हैं, क्या आपको कभी हेडक नहीं होता है? तो दादी जी ने बड़े सहज भाव से मुस्करा के उत्तर दिया कि हेडक किसको होता है, जो अपने को हेड समझता है उसको हेडक होता है। मैं तो प्रशासन का कार्य करते हुए भी अपने को कभी हेड समझती नहीं। हेड तो हमारा वो है ऊपर, परमपिता परमात्मा, कराने वाला वो है, तो मैं क्यों चिंता करूं? और मेरे पास हेडक किस चीज का आएगा? मैं कभी भी हेडक में नहीं रहती हूँ। इसी प्रकार हर एक प्रशासक को, चाहे वो परिवार को चलाता है, चाहे समाज को चलाता है, चाहे अपने देश को, चाहे राज्य को, चाहे कारोबार को, बहुत क्वालिटी वाला होना चाहिए और बहुत ही योगी जीवन उसको बिताना चाहिए। और योगी जीवन का अर्थ होता है युक्ति युक्त, वो जो कार्य करेगा युक्ति युक्त करेगा, उसका हर कर्म इंद्रियों के ऊपर संतुलन रहेगा, कंट्रोल रहेगा, संयम रहेगा, नियम रहेगा। ऐसा प्रशासन करना ईश्वरीय विश्वविद्यालय आध्यात्मिक शक्ति के आधार से सिखलाता है।
सबसे पहले प्रश्न करेंगे निहार रंजन महापात्र जी।
ज्ञान जो आप लोग सुनाते हैं उसके अनुसार जो होना है वही होगा, क्योंकि सब कुछ ड्रामा में नुंदा हुआ है। अगर ये है तो कोई आदमी पुरुषार्थ क्यों करे?
क्योंकि ज्ञान को एक लाइट और माइट कहते हैं, जानने के लिए। उसका मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ करें नहीं, पुरुषार्थ के बिना तो रोटी भी खाने को नहीं मिलती है। फिर क्या होगा आपको मालूम नहीं है। पहले तो आपको अच्छा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। एक किसान खेत में बीज बोता है, वो पहले ये लक्ष्य रखता है कि मैं 20 मन अनाज पैदा करूंगा, और उसी लक्ष्य को रख के खूब मेहनत और पुरुषार्थ करता है। फिर जब होता है उसका 10 मन, तब वो कहता है कि इतना ही मेरे भाग्य में था। अगर पहले से ही सोचता कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा, 2-4 मन होगा, तो वो पुरुषार्थ कम करता तो 10 मन भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार कॉलेज में या स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो पहले से ही सोच रहे हैं कि मैं तो 3rd डिवीजन में आऊंगा, तो क्यों मैं इतना पाठ पढ़ूं? उनको मालूम नहीं है कौन सी डिवीजन में आएगा, लेकिन वो पुरुषार्थ तो 1st डिवीजन में आने का करता है। पुरुषार्थ के बाद जब रिजल्ट में देखता है कि मेरी 3rd डिवीजन आई है, तब वो कहेगा कि मेरा भाग्य। पहले भाग्य नहीं है, पहले है पुरुषार्थ। पहले हम पुरुषार्थ करें कि मुझे ऊंच लक्ष्य पर पहुंचना है, तब तो आप ऊंच मेहनत करेंगे, ऊंच पुरुषार्थ करेंगे। और पहले ही आप नीच लक्ष्य को रख लेंगे, छोटे को, तो पुरुषार्थ कैसे होगा? तो भविष्य में क्या है आपका पाठ आपको मालूम नहीं है, उसके लिए हमें ऊंचा लक्ष्य रख के पुरुषार्थ करना चाहिए। बाद में जो होता है तब कहेंगे कि ये ड्रामा बना हुआ है, पहले नहीं। फर्स्ट है पुरुषार्थ, पीछे है भाग्य, तीसरा नंबर है ड्रामा। तो अभी तो शूटिंग का टाइम है ना, तो शूटिंग के टाइम पे हम डल होके बैठ जाएं और कोई रिहर्सल ही नहीं करेंगे तो पार्ट क्या प्ले करेंगे, डल हो जाएंगे, डल पार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें फर्स्ट क्या रखना है कि मैं अच्छा पुरुषार्थी बनूं, अच्छा ऊंच लक्ष्य रख के कार्य करूं।
तो क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच,
नहीं सोच,
अपना अभी का जो काम है, अभी का जीवन ठीक तरह से हमको जीना चाहिए,
ऊंचा लक्ष्य रख के पुरुषार्थ।
हाँ, बिल्कुल। अभी हम अनुरोध करेंगे नागेंद्र कुमार मुंजी को अपना प्रश्न पूछने के लिए।
एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपने आप को एक हायरार्की का एक पोजीशन में रखता है, इसका मतलब है कुछ लोग आपका नीचे रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं। तो ऊपर वाला जो रहता है वो हम लोगों का बॉस टाइप का होता है, इस वो हमारा सीसीआर देता है, हमारा प्रमोशन के लिए इसका सब कुछ करता है। तो इसी टाइम में हम देखते हैं कि सब लोग एक्चुअली करप्शन में डूबे हुए हैं, तो कुछ भी फिर भी हमारा पार्ट भी कुछ स्ट्रांग है वहां पे, कि हम लोग जब इसको काउंटर करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, वो बहुत क्षति हो सकता है, इसी में एक्चुअली हम लोग एक्चुअली कन्फ्रंट करते हैं, फाइल का ऊपर, रिकॉर्ड का ऊपर, प्रिंसिपल का ऊपर करते हैं, लेकिन वो डिसीजन ऊपर वाला एक्चुअली रिसाइन कर देता है, वो इसको ऊपर दूसरा कुछ कर देता है, इसीलिए कि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। तो इसी टाइम में हम लोगों का हम कुछ न कर पा रहे हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन में होके हम कुछ न कर पा रहे हैं और ज्यादा एक्चुअली लॉस हो रहा है, तो हम इसी में थोड़ा हम लोगों का थोड़ा टेंशन भी होता है। तो आप जो बोले हैं कि क्वालिटी मेंटेन करना है, स्टैक मेंटेन करना है और संतुलित रहना है, इसमें संतुलित डिस्टर्ब होता है, तो इसी जगह में हम लोग क्या करें।
आपको ये मालूम हो गया कि ये भ्रष्टाचार और अनाचार या अनुशासनहीनता का युग है जिसमें ये सब अति से ज्यादा होगा, और आप ये भी जानते हैं कि अनुशासनहीन व्यक्ति ऐसे ही होता है जैसे घोड़े पर बैठा हो और लगाम उसके हाथ में नहीं है, बेलगाम घोड़ा। तो वो जो भी करता है अगर आपका संतुलन ठीक है और आपके पॉजिटिव विचार हैं और आप अपने हमेशा अपने ऊपर ध्यान रखते हैं कि मुझे एक सुप्रशासक होके चलना है, चाहे आपको कितना भी कोई कुप्रशासक बनाने की कोशिश करे, चाहे कितना भी रिश्वत देने की कोशिश करे, और चाहे नीचे वाला नीचे गिराने की कोशिश करे, लेकिन आपको अपने विचारों में दृढ़ता रखनी होगी और आपको अपना मनोबल बुद्धिबल ज्ञान से योग से बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि ना ऊपर वाले आपको कुछ कह सकेंगे ना नीचे वाले कह सकेंगे।
लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो अभी बिगड़ रहा है,
हाँ,
जिसका ऊपर ज्यादा लोग भरोसा करते हैं,
हाँ,
और ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचेगा तो लोगों का भी एक्चुअली पेट नहीं भरेगा, सैलरी भी नहीं पाएंगे।
हाँ,
इसी जगह में आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, बिगर पोस्ट में हो और कुछ नहीं कर पाते हो चाहते हुए भी, इसी टाइम में थोड़ा दुख होता है। तो इसका मतलब नहीं कि मेंटेन हम नहीं कर सकते हैं,
हाँ,
कि इमेज ऐसा बात नहीं है, ऐसे हो सकता है,
पर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तो मालूम पड़ गया अभी अंत का टाइम चल रहा है।
ठीक है,
अंत का बात क्या आता है, आदि, अति का अंत होता है, जब ये सब चीजों का अति होगा तब उसका अंत होगा। पर मैं क्यों दुखी हूँ, सबका मालिक तो वो है ना परमात्मा, वो जाने, सबका तो हमने ठेका नहीं लिया है ना, आपने लिया है, बाकी कौन क्या कर रहा है या संस्था को कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो उसमें हमारा इतना वो नहीं होना चाहिए, उसमें घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको जब ये नॉलेज है कि ये दुनिया का जो करप्शन है जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तभी इसका विनाश होगा।
हम जिस स्थिति में काम करते हैं विभिन्न कारणवशतः हम कंटिन्यूअसली टेंशन में रहते हैं, और जब देखते हैं कि हमारे आंखों के सामने ऐसे कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए, मन में क्रोध भी आता है, सो काम बिगड़ जाता है। इस सिचुएशन इससे कैसे ओवरकम करें इसको?
आप एक ऐसी युक्ति सीख लीजिए जो आप टेंशन में नहीं रहे, अटेंशन में रहे। और अटेंशन में कब आएंगे? जब आपको स्वयं का परिचय होगा, स्वयं का ज्ञान होगा। क्योंकि स्वयं जब बॉडी कॉन्शियसनेस में आती है तो टेंशन आता है और क्रोध आता है। जब आप ये सोचेंगे मैं बॉडी तो नहीं हूं, ये तो इस वाहन को चलाने वाला चालक है, वो शरीर के अंदर एक अलग शक्ति है जो या शरीर में भृकुटी के बीच में बैठती है, उसको कहते हैं सोल। वो अजर अमर अविनाशी है। जब आप उस सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा और क्रोध भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि क्रोध एक भूत है, क्रोध एक रोग है, और वर्तमान समय परमात्मा आध्यात्मिक क्षेत्र में ये सिखा रहा है कि क्रोध करना पाप है। कौन क्या कर रहा है इसमें आप क्यों जाते हैं? आप अपने सुधर्म में रहिए, आप अपने आप को पहचानिए, परमात्मा को पहचानिए, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल लाइन को अपने जीवन में ले आइए, तो आप ना टेंशन कर सकेंगे, ना किसी प्रकार का क्रोध आएगा, और शांति से उस कार्य को निपटा लेंगे। क्योंकि जो शांति का सागर है परमात्मा, उसके साथ जब आपका संबंध हो जाएगा, रिलेशन, तो वो है ऑल माइटी अथॉरिटी। वो आपको विल पावर सप्लाई करता रहेगा, और उस विल पावर के कारण, बुद्धि बल के कारण आप हर चीज को कंट्रोल कर लेंगे। जहां क्रोध की जगह क्रोध को सेफ कर लेंगे, नहीं मुझे क्रोध नहीं करना है। टेंशन आता है किसी प्रकार का, दूसरे को गलत देखकर कि नहीं मैं गलत नहीं करूं, ये कर रहा है तो सब अपना अपना भाग्य और पाठ लेकर आए है ना। दूसरे के भाग्य और पाठ को, कोई को रावण का पाठ बजाना है तो वो तो बजाएगा, अगर नहीं बजाएगा तो रामलीला कैसे अच्छी होगी। तो ये दुनिया जो है, विश्व है, एक मंच है, और इस पर हर एक व्यक्ति अपना अपना अभिनय कर रही है। जब अपना अपना हर एक नर नारी अभिनय कर रहा है, तो किसी के अभिनय को देखकर मैं क्रोधित क्यों होता हूं, मैं क्यों नहीं मुस्कराता हूं, इसका ऐसे ही पार्ट है। अब आपको भी एक अच्छा अपने को एक्टर समझ के अभिनय करना चाहिए।
मैं बैंक में काम कर रहा हूं, मेरा ब्रांच में थोड़ा ज्यादा स्टाफ है, लेकिन वो थोड़ा बात मानते नहीं, थोड़ा जो बात नहीं मानते है वो उसी टाइम पर भी काम होता नहीं है, इसलिए वो उसको कैसे चलाएंगे, उसका तरीका बताइए ना आप।
सबसे बड़ी चीज संसार में लव है, और सबसे खराब है क्रोध। तो आप अगर किसी को अपनी बात मनवाना चाहती है तो पहले उसको लव दिखाओ, और बड़े प्रेम प्यार से आप चार आदमी के बीच में उसको ऑर्डर करोगे, और वो अपमान समझ लेगा और वो मानेगा नहीं। मान लो एक बार उसने नहीं माना, फिर आप उसे अकेले में अपने पास नजदीक लाके बड़े प्यार से समझाइए कि देखिए आपका ऐसा नहीं मानने से ये नुकसान होता है, क्या नुकसान करना अच्छा है? मैं आपको एक बड़े भाई के नाते से प्यार से कह रहा हूं, इसलिए आप ये बात अपनी इस प्रकार ठीक करो। तो प्यार में तो पत्थर भी पानी हो जाता है, कभी कभी नहीं भी होता है, तो उसके पार्ट के ऊपर छोड़ दो आप।
नहीं, जो उस टाइम तो लॉब तो आता नहीं, उस टाइम तो थोड़ा काम नहीं हुआ तो थोड़ा क्रोध भी आता।
क्रोध नहीं करना चाहिए, यही तो बात है। अगर उस टाइम आपने क्रोध किया फिर भी आप रियलाइज करो, और दूसरे मिनट में शांत होकर फिर उसको प्यार से गले लगाओ।
जो थोड़ा तो कस्टमर भी थोड़ा सामने खड़ा है,
हाँ,
वो थोड़ा एक बात हम बोले जो उसको कर दो, तो अभी तो हमको करने का टाइम नहीं है,
हाँ,
क्या करेंगे उसी टाइम?
नहीं, आप अगर उसको संतुष्ट कर सकती है थोड़ा सा और ज्यादा टाइम देकर, तो उसको संतुष्ट कर दीजिए। नहीं तो उसको बोलो कि देखो हमारे नियम के मुताबिक टाइम पूरा हो चुका और मैं बहुत बिजी हो रहा हूँ, आप कल आ जाइए, कल कर दूंगा, तो मान जाएगा। अगर हम अपनी ड्यूटी में 5 मिनट 10 मिनट अगर ज्यादा दे दें कोई हर्जा नहीं है, थोड़ा 5-10 मिनट ज्यादा देकर उस व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, और अगर वो आपकी बात मान जाता है कि कल आ जाइए तो कल बुला लीजिए, कोई हर्जा नहीं। पहले बात होता है प्रशासक का अपने ऊपर प्रशासन करना, अपने को मैनेज करना कि मैं अपने आप को पहचानूं, मुझे अपने आप को कैसे चलाना है। जब वो अपना प्रशासन करना ठीक से जान लेगा तो दूसरे को भी जान लेगा, नहीं तो अपना भी बिगाड़ेगा दूसरे का भी। और वो तो होगा ज्ञान से, जब आपको ज्ञान होगा कि शरीर है और मैं आत्मा अलग हूं, और आत्मा का फादर अलग है शरीर का फादर अलग है, तो उस फादर के पास तो है ही प्रेम सुख शांति आनंद ज्ञान पवित्रता, और जब उसके साथ आप कनेक्टेड हो जाएंगे तो उससे वो सब पावर आती रहेगी आपको, तो आप अपने को अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप निहारे हो जाइए। मान लीजिए कहीं ऐसी कंडीशन आती है जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम भी तो एक प्रशासन के रूप से बैठे हैं ना, तो हमें क्या हो जाना चाहिए, न्यारा। न्यारी चीज सबकी प्यारी होती है, न्यूट्रल हो जाना चाहिए, दूसरे के ऊपर छोड़ दो, जाओ करो। अगर कोई मान लीजिए लेना चाहता है कि मैं प्रशासक बनूं, मैं ये काम करूं, और मैं जब करती हूं तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करूंगी, उसके ऊपर छोड़ दूंगी, आप करो। मैं जितना लाइट रहूंगी उतना बाबा को याद करूंगी, अपने आप को ठीक रख सकूंगी। अपनी स्थिति को कभी मत बिगाड़ो, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, परिस्थिति तो सब जगह आएगी, घर में आएगी, ऑफिस में आएगी, बाहर में आएगी, जहां जाएंगे उधर आएगी, क्योंकि दुनिया ही इस प्रकार की है, पर स्थिति को बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए।
ओम शांति बहन जी, मेरा एक प्रश्न है, वे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स वेरी बिजी, कैसे योग को इस दिन जीवन में इंक्लूड करेगा?
वो ये है कि अपने 24 घंटे से एक घंटा आध्यात्मिक कॉलेज के लिए देगा, जैसे वो कॉलेज में पढ़ पढ़ के ऊंची पढ़ाई पढ़ पढ़ के तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर बनाए, तो योग के लिए भी एक पढ़ाई है, कॉलेज है, हाईएस्ट कॉलेज जहाँ हाईएस्ट नॉलेज दी जाती है, और हाईएस्ट नॉलेज देने वाला हाईएस्ट है परमपिता परमात्मा। तो जब वो उसने जरूरी समझा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर बनूंगा, अच्छा तो कॉलेज में पढ़ के बना, अब वो चाहता है कि उसमें रह करके मैं योग भी करूं और एक अच्छा सुप्रशासक बनूं, तो उसको अवश्य ही स्पिरिचुअल कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए उसको 1 घंटा 2 घंटा अवश्य निकालना होगा, तभी वो अपने जीवन में सब बातों को सार्थक कर सकता है।
अभी सवाल पूछने के लिए एसएन हुसैन जी से हम अनुरोध करेंगे।
ओम शांति। प्रशासक करने टाइम में ये दिल में ये सवाल आता है कि सांसारिक लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ के सामंजस्य है क्या, सवाल करते हैं।
हाँ, सामंजस्य हो सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ भी सांसारिक लाइफ है, कहीं संसार से बाहर थोड़ी। आज हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन कर रहे हैं तो क्या दुनिया से बाहर है, ये भी एक परिवार है, तो आप अपने परिवार में भी इसको ले जा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी को। पहले यहाँ पर आएंगे आप अपने लिए लेंगे, फिर आप अपने परिवार के लिए लेंगे, ये तो है ही परिवार के लिए, तो एक परिवार भी सारा का सारा स्पिरिचुअल लाइन में जा सकता है, और वो घर एक स्वर्ग बन जाएगा। मान लीजिए एक परिवार, अभी हम उदाहरण बता रहे हैं, बादामबाड़ी में एक परिवार था, चार भाई, चारों भाई साथ में रहती है, उनकी माँ यहाँ आती है और एक भाई आता है, बाकी आपस में सब में झगड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े। हमने उनको ये रास्ता दिखाई कि आप चारों बहुओं को और अपने बेटों को यहाँ ले आओ। थोड़े दिन के अंदर वो अपने बेटों को लाई, फिर उनकी बहू आई पीछे पीछे। जब वो रेगुलर हो गए और आध्यात्मिकता उनके जीवन में आ गया, तो 6 महीने के अंदर उनकी माँ बोली, मेरा घर तो स्वर्ग हो गया है, आध्यात्मिकता से भर गया है, सब बदल गई। आध्यात्मिक शक्ति है ही परिवर्तन करने के लिए। परिवर्तन कोई कपड़ों का नहीं करेगी, वस्त्रों का नहीं करेगी, कोई गेरुआ वस्त्र पहन के जंगल में नहीं जाना है, लेकिन मेंटल परिवर्तन, मानसिक शांति और अंदर आपका मन को एकाग्र कैसे हो, बुद्धि कैसे कंसंट्रेशन करे, राजयोग विद्या कैसे सीखे, और जो हमारी अंदर विशेष है, बुरी चीज है, जिसके लिए रोज प्रार्थना करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, उनको हम कैसे छोड़े और मुक्ति पाए, वो बातें आध्यात्मिक लाइन में मिलती है। पर जब वो बातें मिल जाएंगी सारे परिवार के अंदर, तो एक परिवार सुखी और स्वर्ग बन जाएगा। आप अनुभव करके देखिए, ये सारा विषय अनुभव का है, कोई ऐसा नहीं थ्योरी जो मैं कह दूं और आप मान ले, नहीं। और ब्लाइंड फेथ भी नहीं चलना है, मैं भी आपको जो कुछ भी बता रही हूँ अपने अनुभव के आधार से।
दीदी शायद समय और हमारे पास नहीं है और क्वेश्चन हम ले नहीं सकते हैं, फिर कभी मुलाकात आपसे होगी, तो बाकी जो सवाल बच गया हमारे पास उस सब का उत्तर हम लोग खोजने का कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। आज का एपिसोड को यही खत्म करते हैं, आशा करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिर जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए, नमस्कार।